परम पूजनीय स्वामी जी मंच पर आसीन सभी सम्मान्य नेतागण स्वागत समिति के अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय तथा अन्य मान्यवर सदस्यगण कड़ी के मेरे लिए चिरपरिचित नागरिक बंधुगण भगिनीगण देश के कोने कोने से आए हुए प्रतिनिधि बंधुगण भगिनीगण पत्रकार बंधुगण और यहाँ के स्थानिक प्रबंधक बंधुगण जिन्होंने हम लोगों की व्यवस्था इतनी अच्छी रखी है जिसके कारण हमारी आदतें बिगड़ने की संभावना निर्माण हुई है, सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी जो आपने देखा वो हिंदुस्तान के राजनीतिक सार्वजनिक जीवन का दृश्य ही देखा। मैं सबके साथ बैठा था लेकिन सबको पीछे खदेड़कर मैं अकेले ही सामने आने का प्रयास कर रहा हूँ। यही दृश्य सार्वजनिक राजनीतिक जीवन का है, केवल मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ। स्वदेशी का जागरण 1857 के स्वातंत्र संग्राम के पश्चात तुरंत ही शुरू हुआ। लोकमान्य तिलक, गोखले जी वगैरह सब लोग, राजा राम मोहन राय वगैरह सब लोग इसमें थे, दयानंद सरस्वती वगैरह, किंतु अधिकृत रूप से ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1906 के कलकत्ता कांग्रेस में इसका स्वीकार किया, जब श्रद्धेय दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज्य राष्ट्रीय शिक्षण स्वदेशी बहिष्कार इस चतुस्सूत्री का उच्चारण किया, उस समय ऑफिशियली इसको स्वीकार किया गया। मान्यता है सबकी कि स्वदेशी यानी देशभक्ति का आविष्कार, किंतु ऐसा होते हुए और स्वराज्य प्राप्त होने के पश्चात जो अपेक्षाएं थी कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, जनता की तो अपेक्षा थी ही, नेताओं ने भी कहा था, वो होना तो दूर लेकिन आज की दुर्दशा में हम क्यों पहुंच गए, इसका थोड़े शब्दों में पहले विश्लेषण करना मैं आवश्यक समझता हूं। ऐसा है कि हमें स्वराज्य तो मिल गया लेकिन मानसिक स्वातंत्र्य नहीं मिला। 14 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ, उसके तहत 15 अगस्त 47 को स्वराज्य प्राप्त हुआ। एक संविधान शास्त्रज्ञ सहलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि हमें जो स्वराज्य मिला वह किसी क्रांति के पश्चात नहीं मिला, और इसके कारण स्वराज्य प्राप्त होने के बाद हम कोई क्रांतिकारक परिवर्तन कर सकेंगे ऐसी एकदम आशा नहीं की जा सकती। पंडित जवाहरलाल जी ने 1937 में ऐसा कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात आज का जो ढांचा है, आज की जो व्यवस्था है, आज की जो ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही है, उसका सैनिधि जैसा का वैसा रहा तो स्वराज्य का कुछ मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन अप्रैल 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाषण देते समय जवाहरलाल जी ने कहा कि भाई वन शुड बी केयरफुल टू डिस्टर्ब एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, आई एम नॉट बोल्ड इनफ गैलेंट इनफ टू डिस्ट्रॉय एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। और हम जानते हैं कि आज की जो व्यवस्था है यह व्यवस्था एक नक्सलवादी नेता नागी रेड्डी करके उन्होंने अपने बचाव भाषण में कहा था उससे असहमत होना कठिन है कि हमें राजनीतिक स्वातंत्र्य तो मिल गया लेकिन आर्थिक और सामाजिक स्वातंत्र्य से हम अभी तक वंचित है, इस उनके कहने से असहमत होना हमारे लिए कठिन है। मानसिक गुलामी यह सबसे बड़ी बात है। उदाहरण के लिए लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन, स्वराज्य प्राप्त होने की संभावना दिखने के पर जवाहरलाल जी और वल्लभ भाई मिलकर सोचा कि भाई अब संविधान बनाना पड़ेगा, कौन बनाएगा, हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं, उधर उनकी दृष्टि नहीं गई। जवाहरलाल जी और वल्लभ भाई ने सोचा कि फ्रांस के संविधान शास्त्रज्ञ रिज्विक रेनिंग्स, इनको बुलाना है भारत का संविधान बनाने के लिए। दोनों गांधी जी के पास गए, गांधी जी को बताया। गांधी जी ने कहा अरे अपने देश की इज्जत क्या रहेगी, इतना लंबा चौड़ा देश, इसमें तरह तरह के हमारे विद्वान लोग हैं, हमारा संविधान बनाने के लिए हम फ्रांस के यदि आदमी को बुलाते हैं तो इन्होंने कहा फिर किसको बताया जाए। गांधी जी ने सुझाव दिया, हालांकि गांधी जी और बाबा साहब आम्बेडकर का हमेशा झगड़ा चलता था तो भी बड़े लोगों की बड़ी बात है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि संविधान बनाने का काम बाबा साहब आम्बेडकर को दिया जाए। माने हर बात में मानसिक दासता का परिचय, संविधान बाबा साहब की इच्छा के अनुसार नहीं बना। और संविधान में ज्यादातर पश्चिमी देशों का इंग्लैंड का 1935 एक्ट का अनुकरण किया गया। आम्बेडकर की इच्छा के अनुसार नहीं था, इसलिए जब लोग कहते थे उनको कि यू आर मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर कहते थे नो सर, आई एम नॉट मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई वॉज ओनली ए हैक टू राइट डाउन व्हाट यू टोल्ड मी। तो इस तरह से पश्चिमी देशों की पद्धति यहाँ लाई, किंतु ये पद्धति यहाँ सूट नहीं करेगी। यह बात 1908 में महात्मा जी ने, 1914 में योगी अरविंद ने, 1922 में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने, 1940 में मानवेंद्रनाथ रॉय ने स्पष्ट लिखा था कि हमारे लिए सूट नहीं करेगा। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी उस समय पूजनीय श्री गुरुजी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे, ये सब ने कहा था कि इसका अनुकरण मत करो, ये मानसिक दासता है। और इसी के कारण राजनेताओं में एक भावना फैल गई कि जब तक अमेरिका का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक कोई भी हिंदुस्तान में शासन नहीं चला सकता। और इसके कारण विश्व व्यापार संगठन जब निर्माण हुआ तब पार्लियामेंट को अंधेरे में रखकर इस विषय पर सार्वजनिक चर्चा नहीं होने देते हुए गुपचुप अंधेरे में सिग्नेचर करके आए कि हम विश्व व्यापार संगठन ज्वाइन कर रहे हैं। और उसके बाद जितने प्रतिनिधिमंडल गए सबको सरकार का आदेश था कि यूरोप अमेरिका के खिलाफ एक शब्द में नहीं बोलना है। इसी के कारण जब एक बार एक प्रतिनिधि ने भारत विरोधी कोई बात आई उसके खिलाफ आवाज उठाया, अमेरिका ने भारत को फोन किया कि तुम्हारा आदमी ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट है, बाधा ला रहा है, 24 घंटे के अंदर उसको वापस बुलाया, दूसरा आदमी भेजा, ये इंस्ट्रक्शन देकर कि यूरोप अमेरिका के कहने के मुताबिक वोटिंग करो। इसीलिए चित्रा सुब्रमण्यम ने कहा इंडिया इज फॉर सेल, WTO में हिंदुस्तान बेचे जाने के लिए आया है। इस परिस्थिति में से यहां धीरे धीरे जन जागृति हुई, स्वदेशी जागरण मंच निर्माण हुआ। स्वदेशी जागरण मंच ने स्वयं अपने बलबूते, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ के बलबूते, अन्य भी देशभक्तों ने साथ दी, प्रचंड जन जागरण किया। शुरू में अपने लोग कहते थे अरे WTO के बारे में क्या पॉलिसी रखना, ये सरकार नहीं जानती क्या, सरकार से आप ज्यादा जानते हैं क्या। लेकिन जैसे जनमत का दबाव बढ़ा वैसे अपने कैनकुन में देखा कि जो बात स्वदेशी जागरण मंच पहले से कहते आया था वही बात अरुण जेटली को वहां कहनी पड़ी। और इस तरह से अब लोगों का मुंह बंद हो गया जो कहते थे कि वहां क्या करना क्या न करना, कि सरकार जानती है आप क्या जानते, ये बोलने वाले का मुंह बंद हो गया। किंतु अभी हम एक क्रूशियल पॉइंट पर खड़े हैं। कैनकुन हो गया, कैनकुन के बारे में अलग अलग वर्षन से, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि अरुण जेटली की भूमिका प्रशंसनीय रही। 2021 विकसनशील देशों का उन्होंने ग्रुप बनाया, बाकी जो ग्रुप्स थे उनको सबके साथ सहयोग किया, बहुत अच्छा काम किया। हालांकि एक रिपोर्ट यह भी है कि एक दिन पहले, समाप्त होने के एक दिन पहले, ग्रीन रूम में से जब यह सुझाव आया कि भाई ऐसा करो, ट्रेड फैसिलिटेशन का बिंदु नेगोशिएशन टेबल पर आने दीजिए, ये आप करेंगे तो हम आपको सब्सिडी के बारे में फिर से सोच विचार करेंगे, तो कुछ अरुण जेटली फिसल गए, ऐसे भी एक रिपोर्ट है। और बाहर जब आए अरुण जेटली तो अमेरिकन करेस्पॉन्डेंट्स ने उंगली दिखाकर उनको कहा कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द कॉन्फ्रेंस। अरुण जेटली ने कहा नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट इज द अफ्रीकन कंट्रीज दैट आर रिस्पॉन्सिबल, ये कहा। लेकिन बाद में होटल में गए, मैं फोन लगाया, हिंदुस्तान से यह पता चला कि आपके फर्म स्टैंड के कारण कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, इस बात की बड़ी भारी प्रशंसा हिंदुस्तान में हो रही। उन्होंने तुरंत भाषा बदल दी, पहले कहा था कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, अफ्रीकन कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल, तुरंत उन्होंने कहा कि माई फर्मनेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द कॉन्फ्रेंस। किंतु ये खैर ये अलग बात है। कैनकुन कॉन्फ्रेंस के पश्चात विकसित गोरे देशों ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी, और जो बदली हुई स्ट्रैटेजी है उसमें क्या भूमिका लेना, इसका हमने विचार करना चाहिए और भारत सरकार और भारतीय जनता को बताना चाहिए क्या स्ट्रैटेजी लिए, जरा समझ लीजिए। अभी तक तो यह होता था कि गोरे देश ग्रीन रूम में बैठकर उनके लिए सुविधाजनक क्या है यह तय करते थे, वैसा प्रस्ताव बनाते थे और वही प्रस्ताव WTO के जनरल मीटिंग में रखते थे और बाकी देशों को दबा कर कहते थे कि इसको आपको पास करना होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे भारत में वैसे विकसनशील देशों में जागृति आने लगी, और इस कैनकुन के कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट हुआ कि अब विकसनशील देश विकसित गोरे देशों को दबने वाले नहीं है, यह बात फॉर द फर्स्ट टाइम प्रथम बार यह बात स्पष्ट हुई। यह होने के बाद उनके सामने बड़ी समस्या निर्माण हुई। आपको पता है कि WTO मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस 2 साल के बाद होती है, और इस तरह से 1 जनवरी 1905 को ही यह कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, तो भी इस 15 दिसंबर को एक कॉन्फ्रेंस रखी गई क्यों, बहुत लोगों को इसका पता नहीं है। ऐसा था कि प्रारंभ में सभी विकसनशील देश गरीब देश गोरे देशों पर पूरा भरोसा रखते थे, ये हमारा कल्याण करने वाले ऐसा समझते थे, और इसलिए गफलत में उन्होंने कई बातें स्वीकार कर ली थी। उसमें से एक बात यह थी कि कृषि माल इस पर आयात करते समय क्या जकात और क्या शुल्क लगाना चाहिए, इसके बारे में कोई भी विवाद खड़ा न करे, दिसंबर एंड 2003 तक कोई भी विवाद खड़ा न करे, कितनी भी जकात हो कितना भी शुल्क हो। और गफलत में विकसनशील देशों ने बात मान ली थी। उदाहरण के लिए देखिए, उस समय अमेरिका में $2 बिलियन का आयात बांग्लादेश से होता था और फ्रांस से 30 बिलियन डॉलर्स का आयात होता था, लेकिन फ्रांस के 30 बिलियन डॉलर्स के आयात पर जो जकात और शुल्क थी उसे कई गुना ज्यादा बांग्लादेश के $2 बिलियन इतके आयात पर थी। इससे अंदाजा लगा सकता है कितना अन्याय चल रहा था। अब ये जो था, ये जो क्लॉज था, उसकी मियाद दिसंबर 2003 तक थी, और यदि ये लैप्स हो जाती है तो फिर विवाद खड़ा करने का स्वातंत्र्य विकसनशील देशों को मिलेगा, और फिर ये सब घबराने वाली बात उनके लिए हुई। क्योंकि बात ऐसी है कि ट्रेड फैसिलिटेशन हो, इंपोर्ट के जकात शुल्क का सवाल हो, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जिन पर यदि विकसनशील देश फर्म रहे, दृढ़तापूर्वक रहे, तो गोरे देशों के अर्थव्यवस्था को धक्का लगेगा। लेकिन अब पॉइंट ऐसा आ गया है कि यदि विकसनशील देश इन बातों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो विकसनशील गरीब देशों के अर्थव्यवस्था को धक्का लगेगा। ऐसा एक क्रुशियल पॉइंट आया है। विकसित गोरे देशों की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए विकसनशील देश यदि कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो विकसनशील देशों की अर्थव्यवस्था को धक्का लगेगा, और विकसनशील देश अपने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दृढ़ता धारण करते हैं तो विकसित गोरे देशों की अर्थव्यवस्था को धक्का लगेगा। ऐसा एक क्रुशियल पॉइंट आ गया है जो अब तक नहीं आया था। अब ऐसे समय क्या करना, उन्होंने देख लिया, कैनकुन में उसका अनुभव लिया कि अब ये लोग दबने वाले नहीं है। कैनकुन में भारत, अफ्रीकन देश, कैरेबियन देश, पैसिफिक देश, इन सब देशों ने कसकर विरोध किया। अब ये मानने वाले नहीं, ये बात तो समझ गए। किंतु इधर तो ये जो पीस क्लॉज था वह लैप्स होने की बात आ गई दिसंबर एंड में, तो बाद में क्या होगा? यदि वो अपना अधिकार जताते हैं तो क्या होगा? तो उन्होंने नई स्ट्रैटेजी ये ली। विश्व व्यापार संगठन के चेयरमैन ऑफ द जनरल काउंसिल ऑफ WTO और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ WTO दोनों ने तुरंत कैनकुन के बाद अलग अलग देशों के डेलीगेशंस, सरकारें, नेता, इन सब के साथ बातचीत करना शुरू किया, और भाई इसमें से कुछ रास्ता निकलना चाहिए, और सभी बातों के बारे में हम रीओपन करने के लिए तैयार है, रीस्टार्ट करने के लिए तैयार है, किंतु वार्ता टूटने न दे, यह आग्रह करना शुरू किया। सारे मुद्दे हम आने देंगे, विशेष रूप से एग्रीकल्चर, कॉटन, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस और सिंगापुर इश्यूज, ये चार मुद्दों को लेकर इन दोनों अधिकारियों ने सबके साथ बातचीत की और सबको बताया कि भाई वार्ता मत तोड़ो। इसमें उनका क्या दाव है जरा आप ध्यान में रखिए। वार्ता यदि टूटती है तो धक्का लगता है डेवलप्ड कंट्रीज को। वार्ता चलने दीजिए। इसका मतलब क्या है कि दिसंबर एंड में जिसकी मियाद खत्म होती थी उसके बारे में विचार ही नहीं करना, कोई फैसला नहीं करना, और सभी बातों के बारे में, और यहां तक कि चेयरमैन ऑफ दी WTO इन्होंने ये कहा कि भाई हमें यह लगता है कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज के बारे में जब तक पूरी तरह से एलिमिनेशन माने उसको ड्रॉप करने का विचार नहीं होता तब तक कोई वार्ता यशस्वी नहीं होगी, और सबको लालच दिखाकर क्या वार्ता चलने दीजिए। अरे वार्ता चलने दीजिए इसका मतलब क्या है? नई स्ट्रेटेजी है क्या? 1 जनवरी 2005 तक वार्ता चलने देनी है या अनंत काल तक वार्ता चलने दीजिए? वार्ता चलने दीजिए इसका मतलब क्या है? मुझे स्मरण होता है कि जब ऐसी परिस्थिति आती है कि अपने लिए प्रतिकूल विपरीत ऐसी घटना सामने आती है तो क्या जवाब देना, तो हमारे आर्य चाणक्य ने इस परिस्थिति में क्या कहना ये बता दिया है। उन्होंने कहा आशा कालवती कुर्यात। आप बोल रहे कि फलानी बात होनी चाहिए, आप कहते हैं ठीक है ठीक है, लेकिन जरा राह देखिए, आशा कालवती कुर्यात, थोड़े देर तक रहा देखिए, कालो विघ्न ही नहीं योजे, और बीच में जो काल मिलता है इसमें कोई विघ्न उपस्थित करना, आशा कालवती कुर्यात, कालो विघ्न ही नहीं योजे, विघ्नम निमित्त तब ब्रुयात, और ये जो विघ्न निर्माण हुआ ये क्यों निर्माण हुआ ये कारण भी बताना, विघ्नम निमित्त तब ब्रुयात, निमित्तम चापि हेतुता, किंतु ये जो निमित्त है कारण है वो भी हेतुता है, आप हेतु परस्पर या निमित्त निर्माण कर रहे हैं, इसके कारण विघ्न निर्माण हो रहा है, इसके कारण जो आशा है वो तुरंत फुलफिल करने की जिम्मेवारी आपकी नहीं रहती। ये जो हमारे आर्य चाणक्य ने कहा है, इस नीति पर आज विकसित गोरे देश और WTO के चेयरमैन ऑफ द जनरल काउंसिल मैनेजिंग डायरेक्टर चल रहे हैं। इस परिस्थिति में भारत सरकार अपनी भूमिका पर स्थिर रहे और फिर सभी देशों में साथ को लेकर, जैसे भी बेसिक किस देशों को साथ में लिया है, वैसे पैसिफिक देश, कैरेबियन देश, अफ्रीकन देश और जो फूड इंपोर्ट करने वाले देश हैं, फूड इंपोर्ट करने वाले, उदाहरण थे इंडोनेशिया में WTO की स्थापना के समय वहां का चावल विदेश को जाता था, आज स्थिति ऐसी है कि विदेश का चावल अपने प्रजा को खिलाने के लिए उनको लाना पड़ता है, तो फूड इंपोर्ट करने वाले देश इन सब का एक साथ ग्रुप बनाकर जब तक हम खड़े नहीं होते नतीजा क्या होगा, यदि हम खड़े हो जाते हैं, WTO विकसित गोरे देशों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाई थी, किंतु यदि सारे डेवलपिंग कंट्रीज एक हो जाते उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो वो काहे के लिए WTO में रहेंगे, या तो वो WTO से जाएंगे, और यदि हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, डेवलपिंग कंट्रीज का शोषण चलता है, तो डेवलपिंग कंट्रीज ने बाहर आना चाहिए, सबका मिलकर एक ग्रुप बनाना चाहिए, और अनादर WTO दूसरा विश्व व्यापार संगठन विकसनशील गरीब देशों का बनाना चाहिए, और उसने विकसित गोरे देशों के साथ टक्कर लेनी चाहिए, यही भूमिका इस समय लेना बहुत आवश्यक है। किंतु जैसे मैंने कहा, यह केवल आर्थिक सवाल नहीं, मानसिक सवाल है, पहले से जो चलता आया है मानसिक गुलामी आज भी चल रही है। केवल उदाहरण के लिए बताऊं, हमारे राजनेता कहते हैं, अरे भाई सब स्वदेशी वगैरह सब बातें ठीक है, भाषणबाजी सब ठीक है, लेकिन जब तक यूरोप अमेरिका से हमें आर्थिक फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सहायता असिस्टेंस नहीं मिलता तब तक हम ऐसे खड़े हो कैसे हो सकते। हालांकि बिल्कुल शुरू में WTO के स्थापना के समय यह तय हुआ था कि विकसित देशों ने विकसनशील देशों को फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस देना है, अभी तक चेयरमैन ऑफ द जनरल काउंसिल ने कहा है कि अभी तक WTO की भूमिका इस असिस्टेंस के बारे में क्या रहेगी ये अभी तक तय नहीं हुआ, किसने असिस्टेंस देना कितना देना ये तय नहीं हुआ, कुछ विचार नहीं हुआ। किंतु राजनेता कह रहे कि जब तक ये सहायता नहीं होती हम खड़े नहीं हो सकते। उल्टी बात देखिए, हमारे आज के राष्ट्रपति अबुल कलम, इन्होंने किताब लिखी है 2020 AD, इंडिया 2020 AD, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा हमें बाहर से कोई भी सहायता नहीं हुई तो भी हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, बाहर के देश हमें टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल सहायता न करें। और टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने कहा कि हमारे देश के लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी निर्माण करने वाले टेक्नोलॉजिस्ट हमारे देश में है, वो टेक्नोलॉजी निर्माण करेंगे और 2020 का साल आते तक हम दुनिया के फ्रंट रैंकिंग नेशंस में जा सकते हैं, बशर्ते कि इच्छा शक्ति लोगों की जागृत हो। सरकार की इच्छा शक्ति, जनता की इच्छा शक्ति जागृत होगी तो हम 2020 तक इस स्थान पर पहुंच सकते हैं। अब किसकी बात सही मानना, राजनेताओं की, जिनको ना टेक्नोलॉजी समझते है ना फाइनेंस समझता है, ये अबुल कलाम थे जो दुनिया के फॉरमोस्ट साइंटिस्ट में से एक है। ये मानसिक दासता दूर होनी चाहिए और इसके लिए क्या करना क्या न करना उपाय सोचा जाएगा। दो तीन दिन हम लोग बैठने वाले हैं, फिर विचार करेंगे। किंतु सबसे पहली बात कि राजनेताओं की मानसिक दासता दूर करना, यूरोप अमेरिका के प्रभाव से उनको मुक्त करना। सोच रहे कि बस अमेरिका दुनिया का लीडिंग कंट्री है, वह कहां लीडिंग है? झूठ बात है। अमेरिका तो नीचे जा रहा है, 1960 से नीचे जा रहा
अपना नीचे जाना रोकने के लिए 73-74 में उन्होंने कानून किया, उसे रोक नहीं सके। 1988 में ओमनिबस एक्ट किया जिसमें कहा गया कि अमेरिका में किस देश का माल उतरने देना नहीं देना यह निश्चित करने का अधिकार अमेरिकन सरकार को रहेगा। लेकिन अमेरिका का माल यदि कोई दूसरा देश उतरने से इनकार करता है तो उसके ऊपर आर्थिक सैंक्शन लगाने जाएंगे, ऐसे डबल स्टैंडर्ड वाला 1988 का ये हुआ। और जो कुछ भी गरीब देशों के लिए उपयुक्त ऐसे प्रोविजंस थी उरुग्वे राउंड में उनको समाप्त किया गया और आज की स्थिति में हम लोग पहुंच गए। इस स्थिति में सबसे पहली बात कि राजनेताओं की मानसिकता बदलना चाहिए, गुलामी से उनको मुक्त करना चाहिए। एक आत्मविश्वास, जैसे अबुल कलाम साहब ने कहा, एक आत्मविश्वास जागृत करना चाहिए। नेताओं में आत्मविश्वास नहीं, जनता में आत्मविश्वास जागृत हो सकता है। हर समय हमने देखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, लोगों ने कितना त्याग किया, महिलाओं ने गहने दिए, लोगों ने अपनी संपत्ति अर्पण की। 1962 में, 1965 में, 1971 में, हर समय जब जब राष्ट्रीय संकट था उस समय लोगों ने अपार त्याग किया है। लोग त्याग कर सकते हैं। सरकार की जो ढोल मोल नीति है इसके कारण गड़बड़ हो रही। तो इस समय इस सम्मेलन ने जहां अन्य बातों पर विचार करना है, वहां सरकार के यह मानसिकता कैसे बदल दी जाए इसके बारे में विचार करना चाहिए। इतना ही कहते हुए मैं मेरा भाषण पूरा करता हूँ।